ओम शांति। तो सेवा शब्द जब हम सुनते हैं तो सेवा शब्द में ही बहुत बड़ा अर्थ समाया हुआ है। सेवा तभी की जा सकती है जब शक्ति हो, जिसकी सेवा करनी है उसके प्रति बहुत स्नेह हो। अगर खुद में ही कोई शक्ति नहीं है और हम कहें हम दूसरों की सेवा करेंगे तो संभव नहीं है। आज अगर किसी को कोई कर्मणा सेवा भी दी जाती है तो उसकी क्षमता को, उसकी शारीरिक शक्ति को भी देखते हैं, ये कार्य ये कर सकेगा या नहीं। ऐसे ही जब मनसा सेवा की बात आती है तो हर एक शब्द कहते हैं मनसा सेवा हम करते हैं। मनसा सेवा बहुत सहज सेवा है, लेकिन क्या हमने मन को इतना सशक्त, इतना शक्तिशाली बनाया है जो मन सेवा के लायक बन जाए? या हम ही मन को अभिशक्ति दे रहे हैं, या छोटी छोटी स्थितियों में, छोटी छोटी बातों में उलझ करके मन की शक्तियों को खत्म कर देते हैं। बाबा ने हम सबके मन को सशक्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, चिंतन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सुंदर खजाना दिया है। मुरली के माध्यम से जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारी विचार शक्ति को समर्थ, शक्तिशाली बनाने के लिए ही है। अगर हम अच्छा अध्ययन करते हैं, अच्छे संग में रहते हैं, अच्छे चिंतन में हमारा समय जाता है तो मन हमारे कंट्रोल में रहता है, वो शक्तिशाली बनता है। और अगर मन के अंदर इधर उधर के बहुत सारे व्यर्थ, नेगेटिव, साधारण संकल्प चलते रहते हैं तो शक्तियां आती ही हैं। एक तरफ से जैसे हम कोई स्थान पर बहुत बड़ा तालाब बनाएं, कुआं बनाएं, चारों तरफ से उसका पानी अनेक स्रोतों से आ रहा हो, वो भरपूर हो रहा हो, लेकिन कहीं छोटी सी लीकेज हो तो जितना एक तरफ से जमा होता जाता है दूसरी तरफ से उसके लीकेज के द्वारा वो बह। मन को शक्तिशाली बनाने के बहुत सारे उपाय बताते हैं। अच्छा संग करो, अच्छा अध्ययन करो, अच्छा भोजन करो, अच्छे वातावरण में रहो, अच्छी पढ़ाई, जो दृश्य श्रव्य सुनते देखते हो वो अच्छी से चीजें देखो और सुनो, तो ये मन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। और मन अगर शक्तिशाली है तो जो संकल्प करेगा वो दूसरों तक पहुंचेगा। वर्तमान समय हम सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चारों तरफ अनेक प्रकार की भय, दुख, चिंताएं हर व्यक्ति को परेशान कर रही हैं। हर एक अपने इष्ट की ओर, परमात्मा की ओर बहुत स्नेह से, श्रद्धा से यही कामना करता है, आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे मदद करो, मेरे पर रहम करो, दया करो। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे, शायद आप बच्चों को इन दुखियों की पुकार सुनाई नहीं देती, बाबा के पास बहुत आवाजें आती हैं। और बाबा अपने बच्चों को ही कहते हैं बच्चे तुम मेरे राइट हैंड हो, मेरे मददगार हो, तुम इन दुखियों की आवाज को सुनो, उन्हें साधो, सहयोग हो, मुक्त हो जाएं, छुटकारा प्राप्त कर लें। शायद इसके लिए जरूर आप सभी कुछ समय निकालते होंगे। सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कलयुग का अंतिम समय है, हर एक के आगे कोई न कोई हिसाब किताब हैं, शरीर के हैं, मन के हैं, धन के हैं, संबंधों के हैं, वो पेपर बन करके सामने आते हैं। कई आत्माएं उन्हीं पेपर्स में इतनी उलझी हुई रहती हैं जो सभी शक्तियां उसके पीछे, खुद की भी नष्ट होती और दूसरों की भी मदद सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब ऐसी आत्माएं जो खुद की ही परेशानियों में परेशान हैं, जो खुद के ही दुखों में दुखी हैं, चिंतित हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स को हल कराने के लिए दूसरों की मदद की, सहयोग की जरूरत महसूस कर रहे हैं, वो मनसा सेवा कैसे कर सकेंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान समय बाबा हम बच्चों को कहते हैं, वाचा सेवा आप बच्चों ने बहुत समय की है और वाचा सेवा के ही परिणाम स्वरूप आज ब्राह्मणों की इतनी संख्या बढ़ी है। आज हमारे पास 10 लाख से अधिक परिवार बाबा के बच्चे बने हैं, ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। सबकी वाचा सेवा की रिजल्ट हम सब ने देखी है, बहुत अच्छी प्रसिद्धि हुई है, नामाचार हुआ है, लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता नहीं हुई। परमात्म प्रत्यक्षता के लिए अपने कड़े हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए और विश्व की आत्माओं को मदद करने के लिए, इस प्रकृति के तमोगुण को परिवर्तन करने के लिए हम सबकी बहुत शक्तिशाली श्रेष्ठ मनसा चाहिए। जितनी शुभ भावनाओं से संपन्न मनसा, बाबा से जिसका संबंध यथार्थ जुटा हुआ है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या मैं मनसा सेवा कर सकता हूं। अगर मैं मनसा सेवा कर सकता हूं, माना मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूं, जो मैं कुछ भी संकल्प करूं वो सिद्ध हो जाए, उसको पहुंचे, उसको मदद मिल जाए, या मैं ऐसा राइट इंस्ट्रूमेंट बनूं, ऐसा एक बाबा का माध्यम बनूं जो बाबा इस माध्यम से सेवा करे, वो सेवा जैसे एक छोटा सा मिसाल मैं आपको बताता हूं, आप सबके हाथ पर आएगा। आज सूर्य की शक्ति कितनी तीव्र है हम सब जानते हैं। सूर्य प्रकृति का एक तत्व, अगर कुछ दिन ये सूर्य का निकलना बंद हो जाए तो ये मानव जीवन समाप्त हो जाएगी। आप सब समझते हो ये प्रकृति की देन, सूर्य की किरणें, जब प्रकाश सवेरे सवेरे निकलता है तो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है, पशु पक्षी जिनको ऑक्सीजन प्राप्त होती है खुश होते हैं, अंधियारा समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे जब वो किरणें तेज होने लगती हैं, दिन आगे बढ़ता है, तो वो तेज किरणें अगर किसी कीचड़ पर, किसी गंदे स्थान पर बहुत देर तक पड़ती रहती हैं तो कीचड़ समाप्त होने लगता है, वो समाप्त हो जाता है, सूख जाता है, उसकी बदबू समाप्त हो जाती है। और अगर वो सागर के ऊपर पड़ रहा है, सागर के ऊपर सूर्य की किरणें तीव्र गति से, तेज गति से जब पड़ने लगती हैं, तो सागर जो खारा है, खारा पानी है, उसमें से वो भाप बन करके हम सब के लिए पीने का शुद्ध स्वच्छ मीठा पानी मिल जाता है। सूर्य है और उस सूर्य की शक्तियों को हम सब नकार नहीं सकते, उसकी बहुत आवश्यकता है। परमात्मा भी हम बच्चों को कहते हैं, मैं ज्ञान सूर्य हूं, और ज्ञान सूर्य परमात्मा की शक्तियां जिस स्थान पर पड़े उस स्थान पर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा वो आप सब अनुभव कर सकते हैं। उस सूर्य की शक्ति को अगर कोई कांच पर एकाग्र करते और कांच के माध्यम से वो किरणों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो सोलार एनर्जी बन जाती है। आज इतनी मोटरें, इतनी लाइट, इतनी सब व्यवस्थाएं जो चलती हैं वो सूर्य की शक्ति का ही फल है, रिजल्ट है। लेकिन सूर्य ऐसे कोई शक्ति सोलार रूप में, एनर्जी के रूप में डायरेक्ट नहीं दे पा रहा है। सूर्य की किरणें एक स्वच्छ कांच पर आई और कांच के माध्यम से जब वो दूसरे स्थान पर एकाग्र हो गई तो वहां अग्नि पैदा हुई, वहां पर स्टीम बनी, एक एनर्जी पैदा हो गई। ऐसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा की, शिव बाबा की किरणों को अगर हम अपने स्वच्छ दर्पण में, मन पर एकाग्र करते हैं, सबसे पहली आवश्यकता मनसा सेवा के लिए, मनसा सकार के लिए मन और बुद्धि की स्थिरता इशारा है। अगर ये भटक रहा है, कोई छोटी छोटी बातें होती हैं संगठन के बीच में, वही चिंतन चलना शुरू हो जाता है, वही सोच चलता है, विचार चलते हैं, सिर भारी होने लगता है, नींद फिर जाती है, हम अपने संकल्पों को ब्रेक नहीं दे पाते। अगर आत्मा शक्तिशाली है तो उसकी पहली निशानी है उसके संकल्प उसके कंट्रोल में होंगे। बाबा ने हम सबको जो राजयोग सिखाया है, राजयोग वो कला है, वो विद्या है जिससे आत्मा राजा बने, स्वराज्य अधिकारी बने, मालिक बन जाए। और मालिक बनना है अपने मन बुद्धि संस्कारों पर, ये सूक्ष्म शक्तियों पर। हम योग करें और दूसरों को योग सिखाएं, लेकिन हम अपने ही मन के मालिक नहीं हैं। चंचल है, भटकता है, अशांत है, मूड एक रस नहीं रहती है, खुशी में नहीं रहते हैं, तो हम मनसा सेवा कैसे कर सकते हैं? मन कमजोर है। इसलिए हम सबको पहला एक अभ्यास करना है। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो बाबा ने हम सबको एक बहुत अच्छी गुफा दी है, तख्त दिया है, और वो गुफा, वो तख्त है भ्रकुटी आसन। मन सेवा की पहली अभ्यास करना होगा कि मैं यहां इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक बहुत शुद्ध पवित्र चैतन्य शक्ति हूं। जब हम उस स्वरूप में काफी समय काग हो जाएंगे, मन का भटकना, इधर उधर के विचार एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तब बाबा की जब किरणें इस आत्मा पर आएंगी, वो किरणें ही विश्व कल्याण की, विश्व परिवर्तन की सेवा करेंगी, उसको ही हम मनसा सेवा कह सकते हैं। मैं समझता हूँ समझ रहे होंगे, बात है थोड़ी सी गहरी बात, कि हम अपने संकल्प कहाँ तक, किस तक पहुंचाएंगे और उनमें है शक्ति कहाँ। अगर हम कुछ समय एकाग्र चित्त होकर के वो स्वच्छ मन से, पवित्र मन से, कोई के प्रति ईर्ष्या नहीं है, नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, बदला लेने की भावना नहीं है, कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं चल रहे हैं, एक शुद्ध संकल्प आत्मा स्थित है। निसंकल्प तो होती नहीं है। कोई कहे मैं मनसा सेवा करने के लिए निसंकल्प बन जाऊं, तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा क्या करेगा, निसंकल्प नहीं है। संकल्प हैं बड़े शुद्ध संकल्प हैं, पवित्र संकल्प हैं, सीमित संकल्प हैं, संकल्पों का बहाव और विस्तार नहीं है। मैं एक लाइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस आसन पर विराजमान मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। अब इन विचारों में हम भ्रमण करते करते अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश और स्वपिता, ये चार चीजें हैं योग की फाउंडेशन। पहले हम स्वस्वरूप में स्थित होते हैं कि मेरा असली स्वरूप एक चैतन्य ज्योति बिंदु है, मैं एक लाइट माइट संपन्न आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म शांत प्रेम सुख आनंद, ये मेरा स्वधर्म निजी धर्म है। और जब हम अपने उस निजी धर्म में, स्वधर्म में स्थित होते हैं तो आत्मा हल्की है, संकल्प बड़े स्वच्छ हैं, हल्के हैं, और वो इस जगत से पार चले जाते हैं, पांच तत्वों की दुनिया से पार। हम अपने लाइट की दुनिया में अनुभव करने लगते हैं कि मैं एक परम धाम की ऊंची स्थिति में स्थित परमात्मा की दिव्य शक्तियों के नीचे हूं। संकल्प शक्ति से ये कार्य हो रहा है और वो संकल्प शक्ति से जब ऊंची स्थिति बनती है तो सूर्य जितना ऊंचा है उतना उसकी लाइट चारों तरफ फैलती है। जितना हम अपनी ऊंची स्थिति में ऊंचाई पर स्थित होंगे और शक्तिशाली स्थिति में स्थित होंगे उतना ये मनसा विश्व कल्याण की सेवा कर सकती है। हद के कल्याण के लिए आप भाई कोई संबंध हमारे है, कोई के आगे कोई कार्य करना है, कोई समस्या के मनसा सेवा करो, योगदान दो, सकास दो। बाबा ये भी सिखाते हैं ऐसे नहीं करना, हमारा परिवार है, हम एक दूसरे के लिए शुभ चिंतक हैं, हम वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो सेवा भी तब वहां पहुंच रही है जब उसके नेगेटिव संकल्पों की दीवार बीच में नहीं है। अगर वही कुछ उल्टा सीधा सोच रहा और हम यहां से बहुत अच्छे अच्छे संकल्प वहां पहुंचा रहे हैं तो उस पर असर नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे अभी बेहद विश्व कल्याण की सेवा करें। उसमें प्रकृति के पांचों तत्व हैं, इतनी बड़े विश्व की हर धर्म की आत्मा है, अनेक टाल टालियां पत्ते पौधे जो भी निकले हैं, बहुत बड़ा सृष्टि का विस्तार हुआ है। दो स्मृतियां पूरे विश्व की बेहद कल्याण की सेवा के लिए बहुत जरूरी हैं। एक स्मृति है पूरे कल्प वृक्ष को सामने लाओ। कल्प वृक्ष का चित्र तो सबने देखा है, कोर्स में दिखाया गया है। कल्प वृक्ष का जो बीज है, वृक्ष का बीज बाबा है, बीज रूप वृक्षपति है और उस वृक्षपति के साथ जड़ों में बैठे हुए हम सब तपस्वी आत्माएं बाबा के साथी हैं, सहयोगी हैं। जो निकला है हम सब देवी देवता घराने की आत्माएं, पूरे वृक्ष की पूर्वज आत्मा है। पहला एक समान है, जैसे घर में बड़े पूर्वज बुजुर्ग होते हैं उनका ध्यान अपने पूरे परिवार पर रहता है, इनको कैसे पालना देनी है, क्या पढ़ाना है, कैसे संग देना है, कैसे इनको समर्थ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, आगे बढ़ाना है, ये आगे चल करके स्वनिर्भर हो जाएं, किसी अधीन न हो, अपने पांव पर आ जाएं, उसके लिए पूर्वजों का बड़ों का बहुत ध्यान रहता है। जो घर के मुखिया होते हैं बड़े होते हैं वो पूरे परिवार का ही चिंतन करते हैं कि परिवार के हर एक सदस्य को ऐसी श्रेष्ठ पालना, ऐसा अच्छा संग, ऐसी अच्छी पढ़ाई जिससे ये आत्मा आगे चल करके किसी पर डिपेंड न हो, ये भावनाएं पूर्वजों की बड़ों की रहती हैं। आप हम सभी को इस समय बाबा अपने बच्चों को अपने समान बनाता है। ब्रह्मा बाबा को एक टाइटल मिला है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा गॉडफादर हैं और ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। समझते हो क्या है, पिताओं के पिता, दादाओं के दादा, ग्रेट ग्रेट भी ग्रेट। क्यों, कल्प वृक्ष के चित्र को अगर ध्यान से देखा होगा, कोई भी शाखा जो निकली है वृक्ष की वो शाखा से शाखा नहीं निकली है, वो तने से ही निकली है। जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म शुरू हुआ सतयुग से, त्रेता युग तक उसकी कोई शाखा नहीं बनी, एक ही सत धर्म चलता रहा। आधा कल्प तक ये वृक्ष तने के साथ मजबूत था, बीज से कनेक्ट था, लेकिन उसके बाद इसकी शाखाएं निकली, इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, शंकराचार्य आए, शाखाएं निकलना शुरू हो गई। लेकिन शाखाएं इसी तने से निकली हैं, ऐसे नहीं इब्राहिम से क्राइस्ट आ गया या क्राइस्ट से बौद्ध आ गया, ऐसा हुआ क्या, कहीं नहीं देखा होगा आपने। जो आत्माएं आई धर्म स्थापन करने के लिए आई, वो सब आत्माएं इसी धर्म की आत्मा को चुन करके उसमें प्रवेश करके अपना धर्म स्थापन किया, जन्म नहीं लिया करके पहले। कोई भी धर्म स्थापक, क्योंकि द्वापर युग से विकारी सृष्टि प्रारंभ हुई, विकारों से उत्पत्ति हुई, सतयुग त्रेता निर्विकारी सृष्टि थी, योग बल की पैदाइश थी, और द्वापर प्रारंभ होते ही देह हुआ और विकारों से भोग की सृष्टि शुरू हुई। अब वो पवित्र आत्मा को जो धर्म पन करना है वो विकारों से जन्म लेकर के धर्म स्थापन नहीं कर सकती। इसलिए इस धर्म की आत्मा जो पहले से पाक प्ले कर रही थी उसके अंदर वो प्रवेश करती है ऊपर से आकर के। जैसे शिव बाबा इस समय प्रवेश होते हैं जन्म नहीं लेते, ऐसे ही दूसरे धर्म की आत्माएं अपना धर्म स्थापन करने के लिए देवता घराने की किसी आत्मा में किसी शरीर में प्रवेश करके अपना धर्म स्थापन करती हैं। इसलिए जितने धर्म जितनी शाखाएं जितनी उपशाखाएं निकली हैं उस सब का जो तना है वो देवता धर्म है। इसलिए देवता धर्म का जो स्थापक ब्रह्मा बाबा हैं वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं और उनके हम सब बच्चे उनके साथ हैं। अब इतने बड़े वृक्ष में हर एक आत्मा ये महसूस करे ये अपने हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में चला गया उसे कोई हमारी घृणा नहीं है नफरत नहीं है अपनत्व की भावना है। मैं आपको एक दृश्य सुनाता हूं। एक बार हमारी दादियां खास एक बार गुलजार दादी अरब कंट्री में गई कुवैत की तरफ बहरीन कुवैत इधर, और वहां सब शेख लोग हैं मुस्लिम लोग हैं और वो कोई भी बहन को अपनी मस्जिद के अंदर ऐसे जाने के अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन दादी देख करके उनको ऐसी फीलिंग आई कि कोई हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज भावना से उन्होंने दादी को कहा कि दादी आपको जो मुंडे की गद्दी होती जिस पर वो बैठ करके नमाज पढ़ते हैं या प्रवचन करते हैं दादी से रिक्वेस्ट की दादी आप इस गद्दी पर बैठो। और दादी जब उस गद्दी पर बैठी तो दादी गुलजार भी दादी जानकी भी ऐसे दो बार गई और वहां से उन्होंने वो जो उनकी भावना थी भाषा थी अल्लाह अकबर उन्होंने भी उच्चारण किया और उनको अनुभव कराया कि हम सब एक हैं। क्योंकि जितने भी धर्म हैं उनके हम सब पूर्वज हैं। बाबा ने सत्य धर्म की स्थापना की और उस सत्य धर्म से ये सब अनेक छोटे छोटे मठ पंथ धर्म निकले हैं, वो सब अपनी ही वंशावली हैं। अब इस बात को बहुत गहराई से महसूस करो, जब तक अपनत्व की भावना नहीं आएगी तब तक उनके प्रति शुभ भावनाएं इमर्ज नहीं होंगी और शुभ भावनाएं नहीं है तो आपकी मनसा वहां तक सेवा नहीं कर सकती, उनको सहयोग नहीं दे सकती, उनको मदद नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है हम सबके प्रति बड़े शुभ चिंतक बन करके, कलयुग का अंतिम समय है, हर एक आत्मा अपना अपना यह किताब हो रही है, दुनिया परेशान है बहुत भटक रही है, ये आत्माएं अब मुक्ति को प्राप्त हो, इनकी भी गति हो, इनको भी सदगति मिले, इस शुभ भावना के साथ कुछ समय एकाग्र चित से बहुत श्रेष्ठ मनसा से पूरे वृक्ष को इमर्ज करके सर्च लाइट दो, इसको मनसा सकास कहते हैं। योग की भिन्न भिन्न विधियां हैं, अभी कमेंट्री से आप सब योग कर रहे थे, लक्ष्य दिया जा रहा था, लेकिन मनसा सेवा के लिए बहुत पवित्र मन शुद्ध मन एकाग्र मन चाहिए, बहुत अच्छी स्थिति चाहिए और इसके लिए आपको थोड़ा सा एकांत का स्थान चाहिए। वैसे बाबा मना करता है एकांत में नहीं जाओ, एकांत में जाने की जरूरत नहीं है, एक के अंत में चले जाओ। लेकिन अगर मान लो, मैं कभी कभी एक बात देखता हूं, मैं संगठन में आके योग करता हूं, इतनी बड़ी सभा में अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं और आंख खोल करके योग हम कर रहे हैं, बंद करते हैं तो नींद की लहर आती है और बाबा मना करता है कि बाबा अगर सामने आ जाए और आप आंख बंद करके बैठे हो तो आप वंचित हो जाओगे, दृष्टि नहीं ले सकोगे, शक्ति नहीं ले सकोगे, इसलिए आंख नहीं बंद करो। अब हम आंख बंद खोल करके ऐसे योग अभ्यास कर रहे हैं और संकल्प चल जाते हैं, कई बार हम उनको इशारा करते भाई उठा दो इनको जगा दो उनको, हमारी जो एकाग्रता है वो खंडित होती है। मनसा सेवा के लिए बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए, कोई भी संकल्प किसी के तरफ ध्यान न जाए, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं एक लाइट हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं, जितनी शक्तिशाली योग की स्थिति बनेगी एकाग्र स्थिति बनेगी बाबा की किरणें आएंगी और वो चारों तरफ वातावरण में रिफ्लेक्ट होंगी, मनसा सेवा होगी। वर्तमान समय प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाने की सेवा, इतने बड़े विश्व की आत्माओं को सकास देना, सहयोग देना, उनको शक्ति देना, और बाबा कहता तुम मेरे बच्चे जवाबदार हो। बहुत ऊंचा टाइटल देता है, तुम आधार मूरत और उद्धार मूरत आत्मा हो। आधार और उद्धार मूरत समझ करके पूर्वजपन के स्वमान में रहकर हम जब योग करते हैं, अभ्यास करते हैं और बाबा की वो शक्तियां अपने पर एकाग्र करते हैं, तब वो शक्तियां इस प्रकृति के तत्वों को, मानव आत्माओं को पहुंचती हैं और उनके अंदर परिवर्तन शुरू होता है। बाबा के अगर संगत रूप में आपके सेंटर पर 10 ऐसे बाबा के पवित्र बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, पूरे संगठन को छोड़ो लेकिन 8-10 लोग भी बैठ करके ऐसी मनसा सेवा, ऐसी सकास दें, तो कई प्रकार के विघ्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। विघ्नों को कोई याद नहीं करना, विघ्नों का कोई चिंतन नहीं करना। मुझे एक दो दृश्य याद आते हैं, कई बार दादी जी हम सबको, प्रकाशमयी दादी पांडव भवन के अंदर शनिवार की रात को खास कहती थी, आज सभी 2 बजे उठेंगे। सभी नहीं, जो कुछ योगी बाबा के बहुत अच्छे दादियों की नजरों में रहते थे कि इन सब को आज 2 बजे योग में उठाएंगे। हम 25-30 भाई बहने 2 बजे 1:30 बजे उठ जाते थे, 2 बजे फ्रेश होकर के 2 से 5 बजे तक दादी जी सामने होती थी, गद्दी पर नहीं, ऐसे नीचे की गद्दी पर, ये तो सोफा कुर्सियां अभी आए हैं तो थे ही नहीं पांडव भवन में, सब गद्दी पर बैठ करके नीचे 2.5-3 घंटा बहुत अच्छी एकाग्रता की भट्टी करते थे। उसमें कोई कमेंट नहीं चलती थी, गीत नहीं ज्यादा होते थे, सिर्फ स्टेजेस को परिवर्तन करने के लिए दादी जी खुद कोई संकल्प देती थी, तो अभी हम चलते हैं बाबा की शक्ति लेंगे, सकास लेंगे, बाबा के वरदानी हाथ का अनुभव करेंगे, ऐसे 1-2 शब्द बोल करके और पूरी सभा को उसी लहर में उड़ा देती थी। मनसा सेवा के बहुत सारे प्रयोग दादी ने हम सबसे करवाए और कई प्रकार के विघ्न होते थे। यज्ञ के आगे आए, कईयों के ऊपर इविल स्पिरिट्स के प्रभाव थे। जब भी दादी को कोई भी बात कहीं से भी सेंटर्स की भाई बहनों की ऐसे आती थी, दादी कहती थी चलो स्पेशल योग करेंगे। ऐसे नहीं कहती थी ये प्रॉब्लम है इसको हटाने के लिए योग करेंगे, नहीं, वो कुछ नहीं बताती थी, आज हम योग भट्टी करेंगे, आज हम मनसा सेवा करेंगे, और उसमें इतनी एकाग्रता, इतनी स्थित, एक भी व्यक्ति कोई सुस्त नहीं, कोई भी झुटका नहीं खा रहा। जब इतनी पवित्र आत्मा एक टिक एक शुद्ध संकल्प स्थित हो जाए, बाबा ने कई बार कहा है जब ब्राह्मणों का संगठन एक संकल्प में स्थित हो जाएगा तो वो संकल्प की शक्ति संगठित रूप में पूरे विश्व का परिवर्तन कर देगी, विनाश ज्वाला भड़क जाएगी, कलयुग का अंत हो जाएगा। ये है मनसा सेवा, क्योंकि वो ज्वाला स्वरूप याद हमारे संस्कारों को भी परिवर्तन करती है और साथ साथ इस सृष्टि की निगेटिविटी को समाप्त करती। परिवर्तन क्या है, विनाश क्या है? सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, उसको कोई विनाश नहीं किया जा सकता। बाबा कई बार कहते हैं प्रलय नहीं होती है, प्रलय शब्द ही रंग है, ये परिवर्तन होता है, जो अति है उसका अंत होता है। सृष्टि तो सदा चली है, अनादि अविनाशी है, सदा ही चलती है। रात जाती है तो दिन आ जाता है, दिन जाता है तो रात आ जाती है। अभी रात पूरी होने का समय है, दिन आने वाला है, और उस सतयुगी दिन के अंदर वही आत्माएं आएंगी जो बहुत इस संगम के समय में पवित्र हैं, योगी हैं, शक्तिशाली स्थिति में रही हैं, जिन्होंने पुण्य की पूंजी जमा की है, वो आ जाएंगी और बाकी सब मुक्त धाम में चले जाएंगे, मुक्त होकर के बैठ जाएंगे घर में, हलचल वाली आत्माएं सब ऊपर चली जाएंगी। इसलिए विनाश कल्याणकारी है, विनाश को रोकने के लिए हम योग नहीं कर रहे हैं, रुक जाएगा, लेकिन विनाश इतना कल्याणकारी है कि सब आत्माएं दुखों से, परेशानियों से, समस्याओं से मुक्त हो जाएंगी और मुक्ति धाम का गेट खुल जाएगा, जो इतने समय की आत्माओं की चाहना है, हमें मुक्ति मिले, मन से मुक्ति, उस मुक्ति विधि ही है जो सृष्टि का महाविनाश होता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बहुत शुभ भावना रख करके, बहुत शुभ चिंतक वृत्ति से कि सब आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएं, विनाश न हो, लड़ाई न हो, झगड़े न हो, ये संकल्प नहीं है। विधियां तो भिन्न भिन्न परिवर्तन की हैं और उसी परिवर्तन, उसी तरह से सृष्टि का परिवर्तन होगा, लेकिन हम उनको प्रेर नहीं रहे, प्रेरक है जो प्रेरक प्रेर करके सृष्टि के विनाश के लिए निमित्त है। बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप बहुत शुभ चिंतक, बहुत कल्याणकारी भावना से ऊंची स्थिति पर बैठ करके, ऊंचाई पर बैठ करके पूरे विश्व को लाइट दो, आप एक लाइट हाउस हो, शक्तिशाली आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो, तो एकांत में बैठ करके एक के अंत में चले जाओ, केवल मैं और मेरा बाबा, इसके सिवा और कोई संकल्प इधर उधर के डिस्टर्ब न करें। जितना समय इस शुद्ध और पवित्र संकल्प में एकाग्र रह सकते हैं, उतनी शक्तिशाली सकाश, सकाश क्या है, जैसे एक तेज आग जलती है कहीं, अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है, तो आग की शक्ति जहां पर नहीं जल रही वहां पर तो कोई भी चीज जल करके परिवर्तन हो सकती है, रूप जल सकता है, लेकिन उसकी जो गर्मी है, उसकी जो आंच है, वो यहां बैठे, यहां आग तेज जल रही है, वहां बैठा है उसको भी लग रहा है कि कहीं से गर्मी आ रही है, कहीं से सकाश आ रही है, कहीं से कुछ तेज लाइट आ रही है। आज बड़ा बल्ब भी कहीं जला दिया जाता है, कितनी दूर दूर तक वो रोशनी भी देता है और रोशनी के साथ साथ शक्ति भी देता है। सूर्य प्रकाश भी दे रहा है और साथ साथ शक्ति भी दे रहा है। लाइट और माइट, ये दोनों शक्तियां सूर्य के तरफ से हमें प्राप्त हो रही हैं। जब हमारी वो ज्ञान सूर्य की स्थिति बनती है तो लाइट भी जाती है, जो मानव आत्माओं के मन में बहुत अंधकार समाया हुआ अंधकार भी दूर होता है, और साथ साथ उसको अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस योग को कहते हैं कि लाइट माइट संपन्न योग है। ये लाइट हाउस माइट हाउस की श्रेष्ठ स्थिति है, और इस स्थिति में बैठ करके जब कोई आत्मा बाबा को याद करती है, उसके साथ अपना संबंध जोड़ती है, तो बाबा की वो सब शक्तियां यहां आती हैं और वो चारों तरफ वायुमंडल में फैलती है। एक बार का अनुभव सुनाता हूं के अंदर, पांडव ने शाम के समय, रोज कोई ऐसा दिन नहीं है पूरे ही वर्ष में जो शाम को 6 बजे के बाद कोई भी स्थूल कारोबार होगा, सब बंद करके अपना काम, कोई शांति स्तंभ पर योग करता है, कोई बाबा के चार धामों में अलग अलग योग करता है, 6 से 8 कोई भी प्रकार की हलचल नहीं होती, 7:30 के बाद थोड़ी होती है, लेकिन अधिकतर ये 2 घंटा बहुत अच्छी रोज की तपस्या चलती है, कोई क्लास नहीं, कोई भी प्रकार की आवाज नहीं। तो एक दिन मैं एक ग्रुप से बैठा था, अपने ऑफिस के आगे दरी बिछाई थी, 25-30 लोग आए थे मिलने के लिए, विशेष टीचर सी थी। मैंने कहा आपसे थोड़ी रूह रियान करते हैं, अभी योग चल रहा है, लेकिन फिर भी आए थे मिलने के लिए। मैं बैठा, कुछ क्लास चल रही थी, कुछ बातें हो रही थी, अचानक ऐसी लहर आई, जैसे कोई शक्ति कोई आई, और सब के सब बिल्कुल 5 मिनट के लिए मौन हो गए, चुप हो गए, कोई बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, इतना सन्नाटा हो गया। जब उसके बाद थोड़ा सा वो कम हुई, फिर से हलचल शुरू हुई, तो हमने कहा क्या हुआ था, ये सब क्यों हुआ ऐसा। बाबा की साकार योगी आत्मा, ये योगी राजयोगी की बात नहीं, दुनिया में जो इतने तपस्वी हैं, योगी हैं, जिन्होंने तपस्या की है, अगर वो अचानक शरीर छोड़ते हैं, उनके जो प्रकंपन है शांति के, पवित्रता के, वो चारों तरफ वायुमंडल में सन्नाटा ला लेते हैं, शांति हो जाती है, पता नहीं चलता है क्या हुआ, न्यूज नहीं है, समाचार कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसे लगते बड़ी शांति है, पता नहीं कहीं से कोई वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो अगर हम सभी संगठित रूप में बिल्कुल शुद्ध एक संकल्प में स्थित होते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संकल्प है मैं एक बहुत पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हूं, और बाबा शांति का सागर है, उसकी किरणें यहां आ रही हैं, और यही किरणें चारों ओर फैल रही हैं, ये मनसा सेवा है, यही सकाश है, और वो शांति की किरणें यहाँ ही नहीं रहेंगे, संगठित रूप में पवित्र आत्माओं की वो शक्तिशाली किरणें बहुत दूर दूर तक जाएगी, जहां आत्माएं पुकार रही हैं, याद कर रही हैं, अपने इष्ट देव को याद कर रही हैं। एक है पूर्वजपन का सम्मान और दूसरा है कि हम पूरे ही वृक्ष की सर्व आत्माओं के इष्ट आत्माएं, कुल देवियां, कुल देवताएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भगवान ने हम सबको इतना पूज्य बनाया है, जो भक्ति काल के अंदर विधि पूर्वक पूजा हो रही है, विधि पूर्वक एक एक देवी देवता के कीर्तन हो रहे हैं, गायन हो रहा है। इतना हम संगम ऊपर महान आत्माएं बनी हैं, बाबा के साथ हीरो पार्ट बजाया है, जो पूरे कल्प के लिए, हर धर्म के आत्मा के लिए, और विशेष करके जो भक्त आत्माएं देवी देवताओं के भक्त हैं, उन सब की इष्ट देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं हैं। हर गांव में, हर शहर में आप अंदर घुसेंगे, कई स्थानों पर मैं जाता हूं तो देखता हूं कि गांव के बाहर एक मंदिर होता है, और गांव में जाने के पहले मंदिर में ले जाते हैं कि ये कुल देवी का मंदिर है, ये कुल देवता का मंदिर है। वो कुल देवी कौन है, वो कुल देवताएं कौन हैं, जिनके दर्शन से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्या उन्होंने ऐसी सेवा की है। आप सब उस सम्मान में स्थित रहो कि जिस शहर में आप बैठे हो, उस शहर के लिए, उन आत्माओं के लिए तो कम से कम कुल देवी कुल देवता हो। ये तो सम्मान में रहे कि हम इनके उद्धारक हैं, इनको फल मुझ आत्मा से प्राप्त होने वाला है, इनके लिए मैं इष्ट देवी इष्ट देव हूं, जिनको पुकार रहे हैं। अब इस सम्मान में अगर नहीं रहोगे तो मनसा सेवा नहीं होगी। इस सम्मान में अगर स्थित हैं, अभिमान नहीं है, अभिमान कई बार आ जाता है कि हम इनसे बड़े हैं, लेकिन बाबा कहता है जितनी अथॉरिटी है उतनी नम्रता है। सम्मान में रह करके अपनी बहुत शुभ भावनाओं से, कल्याण की भावना से, अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों से पूज्य स्वरूप में स्थित होकर के उन आत्माओं की कामनाओं को पूर्ण करो। बहुत कामनाएं, हद की कामनाएं लेकर के आते हैं, कोई को धन की कामना है, कोई को पुत्र की कामना है, कोई को स्वास्थ्य की कामना है, कोई को कोई समस्या उसके हल की कामना है, बहुत सी कामनाएं लेकर के अपनी इष्ट देवी के आगे, कुल देवी कुल देवता के आगे जाते हैं। क्या हम उस सम्मान में रहते हैं कि बाबा आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, जो हम इन सब की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इतना बाबा ने अपने बच्चों को भरपूर किया है, क्या क्या दिया है, आज ज्ञान का इतना अखुट खजाना दिया है, ज्ञान की इतनी ऊंची संपत्ति दी है, जो वो संपत्ति ज्ञान के आगे धूल खींचनी चाहिए। जो आत्मा ज्ञान संपत्ति से, ज्ञान धन से संपन्न है, वो संतुष्ट है, प्रसन्न है। बाबा ने जिस समय यज्ञ के अंदर धन नहीं था, बिल्कुल कंगाली थी, चार आने नहीं है और 400 लोग खाने वाले हैं, उस समय बच्चों को कहा, बच्चे अखबार में लिखो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारी। क्या नशा होगा, आप समझ सकते हो क्या नशा होगा, 380 लोग बैठे हैं खाने के लिए, दोपहर में क्या भोजन मिलेगा कुछ पता नहीं है, चार आना भंडारे में नहीं है, और बाबा कहता हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, बेगमपुर का बादशाह। बहुत ऊंचा सम्मान था। एक दिन भी बाबा ने किसी बच्चे को भूखा सोने नहीं दिया, किसी न किसी को टच करके भोजन खिलवाया, लेकिन इतना ऊंचा सम्मान था कि आपके पास गुणों का धन, शक्तियों का धन, चरित्र का धन, ज्ञान का धन, इतना बड़ा धन है, धन दिए धन ना खुटे, इसका दान करो जा करके। अगर वो पेपर नहीं लेते तो आज हमारे सबका जन्म नहीं होता, समझ रहे हो, अगर वो पेपर नहीं लिया होता बाबा ने, तो ये ज्ञान देने के लिए बहन निकलती नहीं यहां से। पेपर लिया और बाबा ने उनके अंदर शक्ति भरी, अरे तुम चौबा इतना धन है बांटो इसको, और बैठ गए जाकर के गंगा के किनारे, जमुना के किनारे, नदियों पर चित्र लेकर के, ज्ञान का खजाना लेकर के, और बांटने लगे, और बांटना शुरू किया, वो धन आने लगा अपने आप। कहां से कहां पहुंच गए हम। तो इसलिए हम सबके पास जो धन है, जो इतना बाबा ने एक एक बच्चे को संपन्न बनाया है, भरपूर बनाया है, कभी भी अपने आप को कमजोर अनुभव नहीं करो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा कहता है कभी भी भूल से भी नहीं कहना मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो ये सत्यनारायण स्वामी है, समझ जाना, और ये कह देगा तथास्तु, फिर क्या करोगे? बाबा को बोलो, बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना दिया है उतना बहुत कुछ दिया है, मैं धनवान हूं। बाबा आपने मुझे चरित्र का धन दिया, गुणों का धन दिया, शक्तियों का धन दिया, ज्ञान का धन दिया, ये धन हम अगर सेवा में लगाएंगे, बांटेंगे तो बढ़ता जाएगा, वो धन अपने आप आ जाएगा। इसलिए हम सब संतुष्ट मणि बन करके, प्रसन्न चित्त स्थिति में रह करके, प्रसन्नता के वातावरण को क्रिएट करना, प्रसन्नता के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाना, ये हम सरकार देना। क्योंकि सब आत्माएं असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, भिखारी हैं, कोई न कोई चाहना है, कुछ न कुछ मांग रही हैं, और हम बच्चे बाबा के मंगता नहीं है, क्या है? दाता हैं। इस समान में रहो, हम मास्टर दाता हैं। बाबा ने हम सबको माला माल बनाया है, भरपूर किया है, हम महादानी आत्माएं हैं। अगर दाता नहीं बनोगे तो देवता भी नहीं बनोगे। संगम युग पर दाता बन करके जो कुछ बाबा आपने दिया है वो सब के लिए है। संकल्प से दो, दृष्टि से दो, दो बोल से दे दो, आपके संबंध संपर्क में जो आत्माएं आए उसको अच्छा अनुभव करा दो, कुछ दे दो उसको, खाली हाथ कभी नहीं भेजना। बाबा ने अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं भेजा। आज दादी के पास हम जाते थे, जानकी दादी के पास गए, बड़ी दादी के पास गए, कोई भी चला जाए, कभी भी कितनी बार भी हम लोग जाएं, बिना टोली के, बिना स्लोगन के, बिना दो बोल के कभी नहीं वापस भेजा। दिया दिया, देती गई। हमारे सामने कोई आए, हम ये कभी न सोचे मेरे पास कुछ है ही नहीं, इसको क्या दूं? अरे इतना बाबा ने दिया, तुम मुझे बोल बोल दो, प्यार की स्नेह की दृष्टि दे दो, एक वरदानी बोल बोल करके उसके उमंग को बढ़ा दो, उसकी विशेषताओं का वर्णन कर दो, आप कितने श्रेष्ठ, कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं, आपके अंदर ये विशेषता है, ये कला, दो शब्द भी नहीं बोल सकते क्या? अगर आप दाता बन करके रहेंगे तो मनसा सेवा मास्टर दाता बनाती है। और बाबा इस समय कहते हैं, बच्चे आपको कोई बद्दुआ भी दे तो भी आप दुआ दो, यह है मनसा सेवा। वो बद्दुआ दे रहा है, वो हमारा अपोजिशन कर रहा है, और हम अपनी पोजिशन में स्थित होकर के उसको दुआ दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा को सामने सामने बच्चे गाली दे रहे हैं, और बाबा कहते हैं बच्चे निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। एक शब्द भी बाबा ने उनके लिए ये नहीं कहा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये विरोध क्यों कर रहा है, ये गलत बोल रहा है, बच्चा निर्दोष है, इसको पता ही नहीं है। बच्चा समझ करके उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया। गाली देने को भी, गाली देने वाले के लिए भी बाबा ने यही कहा, बच्चे ये आज गाली दे रहा है, जिस दिन पहचानेगा उस दिन एक एक गिनती करके फूल चढ़ाएगा आपके ऊपर। और वही आज हम सब दृश्य देख रहे हैं। स्थापना के समय सबने गालियां दी, बहुत मेहनत हुई बहनों को, जहां जाती थी वहां विरोध होता था, और आज क्या कहते हैं, चरण घुमा दो आकर के, हमारे आश्रम में आके चरण घुमा दो, आप पवित्र देवियां हो। तो इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? शुभ चिंतक भावना से आया, माफ किया, क्षमा किया, बदला नहीं लिया। बाबा अपने बच्चों को सदा कहते हैं, कभी भी ये उम्मीद नहीं रखो ये बदल जाएगा तो हम बदल जाएंगे, कभी भी वो बदलने वाला नहीं है, हम बदल जाएंगे तो अपने आप बदल जाएगा। इसलिए स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। दूसरे बदल जाए हम बदल जाएंगे, इंतजार नहीं करो, मैं बदलूंगा, मैं अपने स्थिति को बदल लूंगा, मैं श्रेष्ठ बना लूंगा, ये सामने वाले अपने आप बदल जाएंगे। तो जितना हम बदलेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे, अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगे, दूसरे की बातों को अपने अंदर समा करके उनको क्षमा देंगे, उतना हम पूजनीय बन जाएंगे। इसलिए हम सब आपके बच्चे संगम पर इतने संपन्न, इतने संपूर्ण, इतने भरपूर रहे, जो कोई भी आत्मा को हम तृप्त कर दे, संतुष्ट कर दे, उसकी मन की कामनाएं पूरी हो जाए। इसी समान में रहना, और उसी समान में बैठ करके, मैं पूर्वज हूं, मैं एक तपस्वी आत्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ मैं उनकी संतान, महान आत्मा हूं, पूरे वृक्ष को इमर्ज करो, शक्ति दो, सकाश दो, लाइट दो, पूज्य स्वरूप से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करो, फरिश्ते स्वरूप से ऊपर से ऐसे सर्च लाइट दो, बहुत लाइट बन करके हल्के हो करके उस स्वरूप में स्थित हो करके चारों तरफ से शक्ति की सकाश फैलाओ। कभी कभी बाबा के पास परम धाम की ऊंची स्थिति में बैठ करके ऊपर से सारे विश्व को सकाश दो, चारों तरफ किरणें फैलाओ। ये बहुत अच्छी मनसा सेवा है और अभी समय आ रहा है, जब तक वाचा सेवा के चांस मिलते हैं तब तक ध्यान रखना तीन प्रकार की एक साथ सेवा करने की जरूरत है। वाचा सेवा तो हम कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ मनसा बड़ी शुद्ध बहुत शक्तिशाली कल्याण की वृत्ति से संपन्न हो। जब मनसा बहुत शक्तिशाली इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए, ये बाबा से अपना अधिकार ले ले, ऐसे नहीं सोचना ये आ जाएगा तो सेवा में सहयोग दे देगा, ये आ जाएगा तो मकान बनवा देगा, ये आ जाएगा तो जमीन मिल जाएगी, ये सेवा स्वार्थ वाली सेवा है, ये आपकी सेवा मनसा सेवा नहीं कहलाएगी। इस सेवा के लिए बाबा मना करता है बहुत ऊंची भावना से। बाबा का ये बच्चा बने, अपना अधिकार ले, अपना वर्षा ले, इस भावना से उस आत्मा के संपर्क में आओ। ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, ये बहुत महान आत्मा है, ये अपना अधिकार लेकर के रहेगी। ऐसी श्रेष्ठ भावना के साथ अगर हम उनको शक्ति देते हैं, सकाश देते हैं, तो वो कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सभी असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट करने का, तप करने का, भरपूर करने का लक्ष्य रखें और अपने भरपूर स्वमान में स्थित होकर के परमधाम की ऊंची स्थिति पर विश्वास करें। ऊंची स्थिति पर स्थित हो गए, मैं एक लाइट स्वरूप आत्मा हूँ, परमधाम में बाबा के बिल्कुल समीप हूँ, ऊपर से पूरे ग्लोब को लाइट जा रही है, सकाश जा रही। तो ऐसे अभ्यास करना और विशेष करके मनसा सेवा का जो समय है, सकाश देने का नमाज शाम का समय है। ये नमाज शाम के लिए कहते हैं, इस समय विशेष 6:30 से 7:30 का जो समय है, यहाँ फरिश्ते देवताएं चक्कर पर निकलते हैं। हम सभी भी अभी ऐसी सकाश देने की सेवा रोज अपने घरों में आधा घंटा तो कम से कम इस विश्व सेवा की, कल्याण की सेवा की विशेष अभ्यास प्रैक्टिस करो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान दो, वाणी द्वारा ज्ञान का दान दो और कर्मणा द्वारा स्नेह और संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को शुभ भावना का दान दो। तो मनसा वाचा कर्मणा जब ये तीनों प्रकार की सेवाएं एक साथ हम बैठकर करते हैं तो उसकी रिजल्ट अपने आप निकलती है। तो समय है, मनसा सेवा जब पूरा ही हाहाकार हो जाएगा तो हम मनसा सेवा करेंगे, लेकिन जब तक सेवा चल रही है तो इसके साथ साथ मनसा शक्तिशाली हो, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को स्नेह मिले, शक्ति मिले, मदद मिले, इस भावना से मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के बैलेंस से हम बहुत अच्छी सेवाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो अभी आधा घंटे के लिए हम सब मनसा सेवा करें। करेंगे सभी? बहुत अलर्ट हो, कोई उठेगा नहीं आधा घंटे। अभी हम पहले अपने स्वस्वरूप में भ्रकुटी आसन पर चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। इन पांच तत्वों की प्रकृति से परे मैं एक लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूँ। अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होकर इस सभा में बाबा का आवाहन करेंगे। परम पवित्र सर्वशक्तियों का भंडार, मेरा बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। उनकी दिव्य शक्तियां मुझे समान भव का वरदान दे रही हैं। सभी उस परम ज्योति के साथ कंबाइंड होकर लाइट माइट संपन्न बनकर बैठो। अपने स्वधर्म में स्थित मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांति शक्ति का पुंज हूँ। चारों ओर वो पवित्रता की किरणें वायुमंडल में फैल रही हैं। सभी वृक्ष पत्ती बाप के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में पति स्वरूप में बैठकर आदि पिता आदि माता उनके बीच में बैठकर मैं पूर्वज आत्मा इस पूरे कल्प वृक्ष की हर आत्मा को शक्तियों की सकास दे रही हूं। सब आत्माएं मुक्त हों, सबका भला हो, सब सुखी हो जाएं, पूरे वृक्ष को शक्ति की सकास जा रही है। अनुभव करो, सभी अपने पूज्य स्वरूप में इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में मैं एक चैतन्य मूर्ति इस मंदिर में विराजमान हूँ। शरीर रूपी मंदिर में मैं परमात्मा की प्रिय मूर्ति सर्वात्माओं की कामना पूर्ण करने वाली पूज्य आत्मा हूँ। अनेक भक्तों की मनोकामनाएं भक्ति काल में दर्शन से प्रसन्न हो रही हैं। मैं संपन्न मूर्ति हूँ। उस भरपूरता के समान में बैठकर अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करो। शांति, शक्ति और प्रेम की अनुभूति करो। अपने चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर, अपने शुद्ध संकल्पों से इमर्ज करो। मैं एक दिव्य फरिश्ता हूं। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्वात्माओं को सकाश दो, बाबा के साथ अव्यक्त वतन की सैर करो, अपने निराकारी वतन में बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होकर ज्ञान सूर्य बाबा की समीपता का अनुभव करो। अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो, बाबा की किरणों के नीचे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप में स्थित मैं एक दिव्य आत्मा हूं।